नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खारिज क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्योहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्शी ने कहा है कि ईरान युद्ध का पूर्ण, व्यापक और स्थायी अंत चाहता है और उसे युद्ध विराम स्वीकार नहीं है। अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ईरान पर लागू तेल बिक्री के कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। इससे समुद्र में फंसे माल की सीमित बिक्री की अनुमति मिल गई है। सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी सब्सिडी वाली कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से नहीं घबराने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी हमले न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि संवाद और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान निकाला जाना चाहिए।
भारत ने पक्ष को रखते हुए कहा, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ये कदम राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कोवलम से TN सुरेश, पीरुमाडी से वी राथेस, मावेलिकेरा से अजीमन, अरुविकारा से विवेक गोपन और चावरा सीट से KR राजेश को टिकट दिया गया है। इस बीच पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। सूची के अनुसार सुश्री कृष्णा साहा को दलगांव विधानसभा क्षेत्र से और जीवन गोगोई को सिसी बरगांव विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर देहरादून में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। श्री यादव ने बताया कि देश का वन क्षेत्र 2014 की तुलना में 13,669 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने तन्वी शर्मा को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज ईशारानी बरुआ और पिचमोन ओपाटनीपुत आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।